أوكي، الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهم قوم لا يعدون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إلا آخر. ربك رب العزة عما يصفون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سب سے پہلے تو ایک ریمائنڈر کہ یہ جو ہم حدیث یہ جو دعا پڑھتے ہیں کلاس سے پہلے، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، یہ سب کو یاد کر لینی چاہیے. اگر کسی نے ابھی تک یاد نہیں کری ہے تو اس کو ضرور سے یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مجھے ریمائنڈ کرائے تو جو آپ لوگوں کے کلاس گروپس ہیں ان کے اوپر یہ دعا لکھی ہوئی شکل میں بھیج بھی دیں گے تاکہ سب اس کو یاد کر لیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ادروائز کلاس لینے کا نہیں ہوگا. اگر ہمیں حق نہیں دکھائیں گے، سچ نہیں دکھائیں گے، تو پھر ہمارے کلاس لینے کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے؟ تو کلاس لینے کا مقصد یہ اچھی بات کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو فائدہ ہوتا ہے کلاس لینے کا، ورنہ خالی ٹائم پاس آ گئے، آ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے جو ہے وہ فنگر نہیں چبھاتے. تو آ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے پھر ایک گھنٹہ پاس کر کے واپس چلے گئے، تو اس سے کلاس کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کلاس کا کس کلاس ہے، کس چیز کلاس ہے؟ یہ قرآن کی تفسیر کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فزکس کی، بایولوجی کی، سائنس کی، اس کی تو کلاس نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگوں سے کلاس ہو اور سائنس کی کلاس کے اندر آپ آ کر کے ایسے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور ایک گھنٹہ پاس کر کے پھر اپنے گھر واپس چلے جائیں، تو آپ کے ٹیچر ناراض ہوں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے، کہ سائنس کی کلاس لینے آئے تھے، میں نے اتنی محنت سے ان لوگوں کو سائنس پڑھائی اور ان لوگوں نے نہ کوئی نوٹس بنائے، نہ یہ کتاب لے کر کے آئے، اور ایسے بیٹھ کر کے شکل دیکھ کر کے ادھر ادھر گھر واپس چلے گئے، تو ٹیچر ناراض ہوں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کلاس سائنس کی کلاس تو ہے نہیں، یہ کلاس تو قرآن کی کلاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ کے قرآن کی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کلاس کے اندر اگر ہم ایسی منہ اٹھائے چلے آئیں گے، نہ کوئی ہمارے پاس بک ہوگی، نہ ہمارے پاس کتاب، نہ ہمارے پاس نوٹ بک ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایسی اٹھ کر کے واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ کون ناراض ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا یہ والی کلاس جو ہے یہ سائنس کی کلاس کی طرح نہیں ہے. تو سب سے میں کہہ رہا ہوں جو آن لائن موجود ہے نا، وہ ایسے ہی آ کر کے خالی نہیں بیٹھ جائیں، وہ اپنے سامنے بک بھی رکھیں اور وہ ساتھ اپنے نوٹ بک بھی رکھیں تاکہ اس کے اندر کس نوٹس بھی بنا سکیں، ورنہ اس کلاس سے فائدہ نہیں ہوگا کہ الٹا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے واپس چلے جائیں گے تو الٹا نقصان ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے بہت ضروری ہے اس کلاس کی اہمیت کو سمجھنا. یہ قرآن کی کلاس ہے، یہ کسی ٹیچر کی کلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میرا نام کاشف ہے، تو یہ کاشف کی کلاس نہیں ہے، صحیح ہے؟ کہ بھائی کاشف ناراض ہو گیا تو کیا ہو گیا، کیا کر لیں گے بھائی ہمارا، کچھ کر لیں گے ہم آپ کا، کچھ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، کچھ نہیں کر سکتے نا، ہمارے ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہماری کلاس تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے قرآن کی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے تو پھر تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے. تو یہ دعا جو ہے، یہ دعا بھی پڑھنی یا مانگنی اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کیونکہ دس شوز کہ وی آر گیونگ امپورٹنس ٹو دس کلاس، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اس کلاس میں آ کے حق سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باطل سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ दुआ इस वजह से ना हमारी हमारी सीरियसनेस को भी शो करती है इस क्लास के बारे में, इस वजह से दुआ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सूरह कहफ की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो इसके अंदर माशाल्लाह हमारी शायद 54th या 55th क्लास है आज, 55वीं क्लास है ये। तो इसके अंदर हमने सूरह कहफ की बहुत सारी बातें पढ़ी हैं और इन जनरल भी हमने कुछ बातें आपको बताई हैं दीन के बारे में। तो बहुत इम्पोर्टेंट रीकैप सूरह है कि ये फितने दज्जाल से हिफाजत करेगी, ठीक है, ये सूरत जो है फितने दज्जाल से हिफाजत करेगी। तो उसका क्या मतलब फितने दज्जाल से हिफाजत करेगी, ये सूरत कोई सुपर हीरो बन जाएगी, ये सुपर हीरोज होते हैं ना वो कार्टून्स के अंदर, तो वो आकर के लोगों की हिफाजत करते हैं है? बैड गाइस से। तो ये सूरत जो है कोई सुपर हीरो बन करके हमारी हिफाजत करेगी, तो क्या मतलब है इसका, सुपर हीरो तो ये नहीं बनेगी कोई, ये स्पाइडरमैन या सुपरमैन या बैटमैन तो नहीं बन जाएगी ना और आकर के दज्जाल से हिफाजत करना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब क्या था कि इस सूरत को जो समझ तो इस सूरत में उसको तरीके बतलाए गए हैं कि जिन तरीकों से वो दज्जाल से महफूज रह सकेगा, ठीक है। इस सूरत के अंदर वो बातें बताई गई हैं कि जिन बातों को जो समझ लेगा ना तो वो दज्जाल के फितने का शिकार नहीं होगा। उन्होंने हमें बताया कि सूरह कहफ से हमें फितने दज्जाल से हिफाजत के लिए बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, जिनमें से एक बड़ा मैसेज क्या है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर 5 कहफ 5 कहफ, ठीक है, एक बड़े को बड़ी जगह को उस केस के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आप बाहर जो फितने दज्जाल हैं 5 कहफ, आप अगर पहला बोलते हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, ठीक है ना, ये पहला कहफ है, हरमैन शरीफैन जिसको कहते हैं, ये पहला कहफ आपने बता दिया जी दाऊद, कुरान पाक के हलके यानी जिन गैदरिंग्स के अंदर आप कुरान को पढ़ते हैं और सीखते हैं कुरान मजीद, ठीक है, उनको कुरान मजीद के हलके कहा जाता है। यहाँ किसी को जवाब नहीं पता गर्ल्स एंड बॉयज के क्लासेस के अंदर, आप बताएं आपने कुछ मस्जिदें इसके अंदर शामिल नहीं है, मस्जिदें नॉट पार्ट ऑफ द 5 कहफ। इसके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं क्यों मस्जिद शामिल नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। हाँ, तो तब्दीली जमात की मेहनत है, तब्दीली जमात की जो तरतीब है ना वो इस हलके में यानी इन 5 कहफों में से 1 कहफ बशायत फरमाते हैं तब्दीली जमात की तरतीब ही है। 3 हो गए, हरमैन शरीफैन हो गए और कुरान मजीद के 10 कहफ हो गए, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो क्लास है ये वही है कुरान मजीद के हलके। ठीक है, 3 उलमा की सोहबत आपने सही जवाब दिया, लेकिन इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं और खानका, हाँ आपने वो भी सही जवाब दिया था, तो 2 जवाब यहाँ पे हमें मिल गए ऑनलाइन क्लास में से। 1 उलमा की सोहबत, इसका मतलब होता है मदारिस, ठीक है, मदरसे जहाँ पर लोग जाकर के आलिम बनते हैं, ठीक है, तो क्योंकि आलिम बनने के लिए मदरसे में आप जाते हैं, मदरसे में आप उलमा की सोहबत में रहते हैं, उलमा आपको पढ़ाते हैं, वो भी आपके टीचर्स होते हैं ना, तो उलमा की सोहबत इज द सेम एज दीनी उलूम के मदरसे, ठीक है। जो लोग दज्जाल के हेल्पर्स होते हैं ना तो उनको ये मदरसे बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मदरसे ख़त्म हो जाएं ताकि लोग दज्जाल से बच ना सकें, तो इसके लिए वो मदरसों को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। और 5वां था खानका जगह को कहते हैं कि जहां पर रहते हैं और वो लोगों को अल्लाह का जिक्र सिखाते हैं और उनकी गलतियों को करेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर की क्लिनिक होती है, तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठ के क्या कर रहा होता है कि उसके पास पेशेंट्स आते हैं, वो पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है और पेशेंट्स को बता रहा होता है कि भाई आप ये खाने छोड़ दें कि खाना नहीं खाया करें, इससे आपकी तबीयत खराब होती है, आप ऐसे काम ना किया करें उनसे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करता है? डॉक्टर करता है ना। लेकिन डॉक्टर जो है वो इंसान के जिस्म के लिए ये सारा काम करता है कि उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और उसको प्रिकॉशंस बताता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो मशायख होते हैं वो लोगों के लिए स्पिरिचुअल डॉक्टर वाला काम करते हैं, ठीक है। वो उनको अल्लाह ताला का जिक्र बतौर मेडिसिन के बताते हैं, ठीक है, और उनको प्रिकॉशंस बताते हैं कि ये गुनाह छोड़ दें, ये वाला जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, गुनाह है, इस गुनाह को छोड़ दें ताकि आप स्पिरिचुअली सेहतमंद बन जाए, ठीक है। तो उनको मशायख कहा जाता है। तो मशायख जिस क्लिनिक में बैठते हैं ना उस क्लिनिक को क्या कहते हैं? खानकाह, ठीक है। मशायख की क्लिनिक्स को खानकाह कहते हैं, ये पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो ये पांच हमारे मशायख बताते हैं कि इस दौर के अंदर इंसानों को दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे। अच्छा, दूसरा रिकैप पॉइंट सूरह कहफ के बारे में ये था कि सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने पांच स्टोरीज भी बताई, पांच स्टोरीज। तो वो पांच स्टोरीज कौन कौन सी हैं? आप लोग लिखें पांच स्टोरीज। जी, सबसे पहली स्टोरी तो है ही, जिसके ऊपर सूरह कहफ का नाम है, ठीक है, असहाबे कहफ, द पीपल ऑफ द केव, ठीक है, ये पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी, हाँ, एक स्टोरी थी, वाली स्टोरी नहीं थी, लेकिन वन ऑफ द फाइव इज मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र अलैहिस्सलाम वाली जो स्टोरी है, ठीक है, जिसके अंदर हुआ था। और असहाबे कहफ तो बता दी ना, ठीक है, हाँ, यहाँ से भी बेल दे लेते हैं। हाँ, द टू मैन और द मैन ऑफ द टू गार्डन्स, ठीक है, द मैन ऑफ द टू गार्डन्स, ठीक है, ये उस स्टोरी का नाम है, यानी साहिबुल जन्नतैन। हाँ, उस मैन के साथ उसका एक साथी था जिसके साथ वो बातचीत कर रहा था, ठीक है, लेकिन स्टोरी इज कॉल्ड एज द स्टोरी ऑफ द मैन ऑफ द टू गार्डन्स। और तीसरी स्टोरी जैसे आप लोगों ने यहाँ लिखा कि आदम एंड इबलीस वाली स्टोरी, आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस वाली स्टोरी, जो कि बहुत ही कम अल्फाज में नताना ने बयान फरमाई है। और चौथी स्टोरी बता चुके ऑलरेडी, खिजर एंड मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम वाली स्टोरी। और पांचवी स्टोरी है द स्टोरी ऑफ ज़ुल्करनैन, ठीक है, द पायस किंग हु रूल्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देन ट्रैवल टू द नॉर्थ, जहां पर के जाकर के उनको एक कौम मिली के जिनको याजूज और माजूज ने बहुत तंग करके रखा हुआ था, बहुत परेशान करके रखा हुआ था। तो उस कौम ने ज़ुल्करनैन से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमारे लिए एक वॉल बना दें क्योंकि हमें याजूज माजूज से महफूज करके रख सके। तो हम यही वाली आयात पिछले चंद क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें ज़ुल्करनैन ने वो वॉल बनाई और उसके बाद फिर उस वॉल के बारे में जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये वॉल उस वक्त तक रहेगी कि जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना आ जाए। जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये वॉल टूट जाएगी, गिर करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें फिर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो कि हमारी इस बुक के कंपाइलर हैं, ऑथर हैं, तो उन्होंने एक लंबी हदीस लिखी थी यहाँ पर। तो उस हदीस को हम पिछली क्लासेस से पढ़ रहे हैं। इस हदीस का अच्छा खासा पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। अब पेज नंबर 660 के ऊपर इस हदीस का थोड़ा सा हिस्सा और रह गया, उसको हम पढ़ रहे हैं कि इस हदीस में ना नबी सल्लम ने फितने दज्जाल के बारे में बताया कि दज्जाल आएगा तो वो कितने दिन तक इस दुनिया में रहेगा, वो कैसे ट्रैवल करेगा, कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतरेंगे तो वो कैसे उतरेंगे, दो एंजल्स होंगे, एक एंजल उनके राइट साइड पर होगा, एक लेफ्ट साइड पर होगा, और वो उतर करके फिर दज्जाल को मार देंगे, ठीक है। और मारने के बाद फिर वो जितने वहाँ पे बिलीवर्स होंगे, मुसलमान लोग होंगे, तो उन बिलीवर्स को फिर पैट करेंगे, जैसे शोल्डर के ऊपर पैट करते हैं या उनके चेहरे के ऊपर हाथ फेरेंगे और उनको शाबाश देंगे कि तुम लोगों ने अपने ईमान की हिफाजत करी फितने दज्जाल के दौर में भी। फिर उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके थे पैराग्राफ नंबर 2 ऑन पेज 660 के जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला याजूज और माजूज को जो है ना वो सेट फ्री कर देंगे, ठीक, खोल देंगे और याजूज और माजूज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। और उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला वही फरमाएंगे कि तुम अपने सारे साथियों को लेकर के एक माउंटेन के ऊपर चढ़ जाओ। वो माउंटेन कौन सा होगा? वो दूर का पहाड़ होगा, ठीक है, वादी सीना के अंदर दूर का पहाड़ है, उस पर वो चढ़ जाएंगे और वहां पर फिर जो याजूज और माजूज है वो नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन याजूज माजूज उसके अलावा दुनिया के हर कोने में फैल जाएंगे और वहां पे लोगों को कत्ल कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। इसके बाद ना एक और भी बात इस याजूज माजूज के मुताबिक लिखी थी कि जब ये लोग निकलेंगे ना तो उस वक्त कुछ और लोग भी सेव रहेंगे, सिर्फ ये लोग नहीं सेव रहेंगे जो कि दूर पे चढ़ गए, बल्कि कुछ और लोग भी। जी, ये जो पांच कहाफ है ना, ये दज्जाल से हिफाजत के लिए थे, ठीक है। लेकिन अब जो दज्जाल तो मर गया, अब दज्जाल से हिफाजत की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये जो केव्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो ये फिजिकल केव्स तो नहीं है ना, ये बाकायदा कोई पहाड़ के केव को थोड़ी है। ये तो मदरसे हैं और तबलीगी जमात के हलके हैं और मकाम करामा मदीना मुनव्वरा ये जगह हैं। तो ये अब सारा मामला खत्म हो जाएगा। अब याजूज माजूज जो है ना वो हर एक को बेसिकली कत्ल करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात अलबत्ता और भी है इसके अंदर जो यहाँ लिखी है कि द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम एंड हिज कंपेनियंस विल टेक रेफ्यूज ऑन द माउंट टूर, अदर बिलीवर्स विल फाइंड सैंक्चुरीज इन देयर ओन फोर्टिफाइड प्लेसेस, ठीक है। यानी माउंट टूर के अलावा और भी जगह होंगी जहां पर के ईमान वालों ने अपने आप को फोर्टिफाई किया होगा, मतलब उन्होंने अपने गिर किसी किस्म के फोर्ट्स बनाए हुए होंगे, ठीक है। ऑन विच माउंटेन? टूर, ये वही माउंटेन है जिस पे हजरत मूसा अलैहि सलाम चढ़ करके अल्लाह ताला से बात किया करते थे, ठीक है। हाँ, ये तूर माउंटेन, ठीक है। तो दुनिया में और भी जगह ऐसी होंगी जहां पर बिलीवर्स ने अपने आप को सेव करके रखा होगा, तो वहां भी याजूज माजूज नहीं आ सकेंगे, ठीक है। फूड सप्लाईज विल बी देयर, यानी उन्होंने अपनी जगहों पर अपने खाने वाने का इंतजाम भी करके रखा होगा। But it would run short, whereupon the head of a bull will be considered better than a 100 dinar. यानी खाने की चीजें इतनी कम हो जाएंगी कि जो खाने की चीजें उनके पास होंगी ना वो बहुत थोड़ी रह जाएंगी और लोग ज्यादा होंगे। तो अब आपको पता है कि जब कोई चीज बहुत कम हो और ज्यादा लोगों को उसकी जरूरत हो तो फिर क्या होता है कि जो दुकानदार होते हैं ना जिनके पास वो चीज होती है वो दुकानदार उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, महंगी हो जाती है वो चीजें, ठीक है ना। अगर चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल हो और लेने वाले कम हो तो फिर क्या होता है उसके ऊपर सेल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी मॉल में जाते हैं ना, मॉल में जगह जगह सेल लगी होती है, 50% सेल, 70% सेल, वो क्यों सेल लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि चीजें उनके पास ज्यादा बच गई होती हैं और खरीदने वाला कोई होता नहीं है, तो इस वजह से वो सेल लगा देते हैं कि भाई ठीक है आपको जरूरत नहीं है लेकिन आप इतने सस्ते में ये चीज हमसे खरीद के ले रहे हैं, दैट इज व्हाई द सेल इज फॉर, ठीक है, व्हाट द सेल्स फॉर। लेकिन जब चीजें कम हो और खरीदने वाले ज्यादा हो, ज्यादा लोगों को जरूरत हो, तो फिर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो ये मेरे सरासर ने फरमाया कि हेड ऑफ अ बुल, हेड ऑफ अ बुल का मतलब ये खाने की चीज, कोई भी खाने की चीज हो, तो लोग जो है वो हम लोग तो वैसे हेड नहीं खाते ज्यादा, आप लोग शायद खाते हो हेड में से वो ब्रेन निकाल के, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग जबान भी खाते हैं, बकरे की जबान और बकरे की सिरी खाते हैं, तो उनके लिए हेड जो है ना वो एक बड़ी मजे की चीज है, ठीक है। तो खाने की चीजें बेसिकली बहुत महंगी हो जाएंगी, हत्ता के 100 dinar से भी ज्यादा उसकी प्राइस लगेगी। देन द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम एंड हिज कंपेनियंस विल टर्न टू अल्लाह एंड प्रे फॉर द रिमूवल ऑफ देयर डिस्ट्रेस व्हिच विल बी आंसर्ड, ठीक है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ ही सारे अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हम जो ये दूर पहाड़ के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं और हमारी जान को खतरा है, याजूज माजूज आके हमें भी मार देंगे, तो आप हमें इससे निजात दिला दें। तो अल्लाह सुब्हान व तआला विल सेंड एन एपिडेमिक वर्म इन नेक। एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है? एक बीमारी होती है, कोई भी बीमारी हो, ठीक है, जिस बीमारी में बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं उसको एपिडेमिक कहते हैं, प्लेग भी कहते हैं उसको, और उसको उर्दू में क्या कहते हैं? वबाई बीमारी, वबाई बीमारी। तो ऐसी बीमारी भेजेंगे कि जिसकी वजह से ना उनके गलों के अंदर कोई वर्म पैदा हो जाएगा, कोई कीड़ा पैदा हो जाएगा, बैक्टीरिया या कोई और किस्म का कीड़ा, वायरस। तो दे विल बी अनहिलेटेड एन मास टू द लास्ट पर्सन, यानी सारे याजूज माजूज उस बैक्टीरिया की वजह से या उस वर्म की वजह से सारे के सारे मर जाएंगे, ठीक है। Then the Prophet of Allah Isa alayhi salam and his companions will come down from the Mount of Tur and see not a handspan worth of land remaining unfilled with corpses. And because of their decomposition, the place will be reeking with a rock, with a strong stench.
यानी जब सारे मर जाएंगे ना तो फिर अब ईसा अलैहि सलाम उनके जो साथी हैं वो माउंट दूर से उतरेंगे और आकर के जब देखेंगे ना तो याजूज माजूज हर जगह मरे पड़े होंगे और इतने सारे होंगे कि उनको कोई चलने की जगह नहीं मिलेगी वहां पर जमीन के ऊपर इतने उनकी बॉडीज होंगी और वो जाहिर है वो मर करके फिर बॉडीज डिकम्पोज भी होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनको किसी ने बैरी तो किया नहीं होगा जमीन के अंदर तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे डिकम्पोज होने की वजह से फिर उनमें बदबू गलती हैं बॉडी सड़ती हैं बदबू पैदा हो जाती है ठीक है तो जब वो ये देखेंगे ना तो द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ईसा अलैहि सलाम एंड हिज कंपेनियंस विल टर्न टू अल्लाह अगेन प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ दिस डिस्ट्रेस एज वेल व्हिच अल्लाह विल आंसर ठीक है यानी देखें इनके ऊपर ये मुश्किल आ रही है ना पहले याजूज माजूज आगे मारने के लिए तो उन्होंने क्या किया अल्लाह ताला से दुआ की तो फिर क्या किया इन्होंने फिर इन्होंने अल्लाह ताला से रुजू किया इसको अल्लाह से रुजू करना कहते हैं टर्निंग टू अल्लाह एंड आस्किंग फॉर दुआ और आस्किंग दुआ टू अल्लाह ठीक है तो ये असल जो ईमान वाला होता है ना उसका यही काम होता है कि जब उसके ऊपर मुसीबत आती है कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले उसने अल्लाह ताला से दुआ करनी होती है सबसे पहले ठीक है एफर्ट्स वो करता है लेकिन बाद में करता है दुआ वो पहले करता है आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं आप अपने घर में हो ठीक है ना और आपका छोटा बेबी ब्रदर हो या बेबी सिस्टर हो कोई ठीक है आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम में थे आप दांत ब्रश कर रहे थे ठीक है आपको एकदम से जो है वो अपने बेबी सिस्टर की जो है वो बहुत जोर की रोने की आवाज आनी शुरू हो ठीक है तो अब आप क्या करेंगे अब बाथरूम से फौरन निकल नहीं सकते ठीक है तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू डू जी सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना वो दुआ करनी है हम ये नहीं करते ठीक है हम करते हैं नहीं क्या हो गया होगा उसको उफ जल्दी से मैं अपना काम खत्म करूं यहाँ से बाहर निकलूं जाकर के उसको देखूं क्या हो गया होगा उसको पता नहीं अम्मी है वहां पर कि नहीं है पता नहीं अब्बू है वहां पर कि नहीं है अब्बू देख रहे हैं उसको कि नहीं देख रहे हैं पता नहीं हो सकता है वो कहीं से गिर गई है ना हो सकता है कि उसने जो है वो किसी और तरीके से अपने आप को हर्ट कर लिया फौरन ये सब कुछ हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है ठीक है ना बट वी डोंट इवन थिंक कि सबसे पहले तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए थी कि अल्लाह कुछ ना हुआ उसको वो ऐसी रो रही हो कुछ उसको ज्यादा बड़ी तकलीफ ना हो गई हो कोई ऐसा मसला ना हो अल्लाह अगर कुछ हो भी गया तो अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए तो जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए ठीक है ना भाई ये दुआ तो हम कहीं भी कर सकते हैं ना इसके लिए ये कोई नहीं बाथरूम में आप दुआ कर सकते हैं पता है ना बाथरूम में दुआ कर सकते हैं आप कुरान पढ़ नहीं सकते बाथरूम के अंदर लेकिन दिल से अल्लाह ताला से जो आप बात करते हैं तो वो आप तो बाथरूम में भी बात कर सकते हैं ना But the point is, ये सबसे पहले दुआ करनी होती है ये फिक्रों के अंदर मुब्तला हो जाना कि पता नहीं क्या हो गया होगा और कैसे उसका हल होगा और कैसे मसला दूर होगा ये गलत बात है ठीक है तो ईसा अलैहि सलाम जो कि ईमान वाले थे पक्के ईमान वाले हैं तो वो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करेंगे ठीक है आयत नंबर तो नहीं पेज नंबर आप देखें 660 ठीक है और आयत नंबर चले आपके पास बुक नहीं होगी आयत नंबर जो है वो 98 निकाल लें आप 97-98 ठीक है अच्छा इसके बाद फिर ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला से तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे He will send birds भेजेंगे with necks like the neck of a camel ठीक है कैमल की नेक सबने देखी है सऊदी अरब में खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत कैमल होते हैं कैमल की नेक कैसी होती है इस तरह से एक लंबी सी नेक होती है ठीक है अजीब तरीके से ना उसमें बेंड होता है तो उन बर्ड्स की नेक्स जो होंगी वो कैमल की तरह होंगी ऐसी बर्ड्स हमने तो आज तक नहीं देखी राइट पहले क्या ना एक बर्ड होती है जिसकी की चोंच बड़ी बहुत अजीब सी बड़ी सी होती है लेकिन नेक उसकी भी छोटी सी होती है तो इन बर्ड्स की ऐसी नेक्स होंगी दे विल हॉल दीस कॉर्पसेस एंड थ्रो देम एट द प्लेस वेयर अल्लाह विल्स ठीक है तो ये सारी बर्ड्स जो है ना ये इनके जो डेड बॉडीज होंगी याजूज की उन सबको किसी तरीके से पिक करेंगी लिफ्ट करेंगी और लिफ्ट करके वो ऐसी जगह जा करके डाल देंगी जिसका कि अल्लाह को मालूम है ठीक है हमें मालूम ही नहीं वो कहाँ जाकर के फेंकेंगी अकॉर्डिंग टू सम नैरेटिव्स दे विल पुट देम अवे इनटू द सी ओशन में जाकर के डाल देंगे जी
फ्लेमिंगोस की नेक होती है, लंबी होती है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो इतनी पतली सी और इतनी फ्रेजाइल होती है, लगता है उनको तो आप छुएंगे तो वो टूट जाएंगे, वो कॉर्पस कैसे उठाएंगे, राइट? तो उनकी तो टांगे भी इतनी पतली पतली होती हैं, एक टांग पर खड़ी रहती हैं बेचारी। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच की नेक, ऑस्ट्रिच की नेक होती है लंबी, हाँ, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं है, नेक ऑफ गैंग है, इतनी लंबी मतलब हमने नेक वाले कोई कोई बर्ड कभी देखी नहीं है, आपने देखी होगी, है? हाँ, ऑस्ट्रिच जोड़ भी नहीं रखता। खैर, तो ये जो बर्ड्स होंगे ना, अब ये हमें नहीं पता कि ये बर्ड्स एग्जैक्टली कैसी होंगी, हो सकता है ये कोई मैकेनिकल बर्ड्स हों, मशीन मशीन की बनी हुई बर्ड्स हों, जिनको हम एयरप्लेन्स कहते हैं, कोई चीज हो, ये तो हमें पता ही, ठीक है, चले अब आगे चल रहे हैं, अभी थोड़े से क्वेश्चन अभी रोके। आफ्टर दैट अल्लाह ताला विल सेंड रेन्स, अल्लाह ताला जो है ना वो बारिशों को भेजेंगे। नो क्ले होम इन द विलेजेस एंड नो बेदुइन टेंट इन द डेजर्ट विल रिमेन विदाउट इट, लैंड्स विल बी वॉश्ड क्लीन एंड लेफ्ट लाइक मिरर। तो ये जो बर्ड्स होंगी ये खाली बॉडीज को उठा करके शायद समंदर में डंप कर देंगी, लेकिन उन बॉडीज से जो जो गंदगी वगैरह निकली होगी, ब्लड वगैरह जो कुछ भी होगा ना, वो सब तो वहीं रह जाएगा ना, जमीन के ऊपर ही रह जाएगा। तो उसके लिए अल्लाह ताला बारिशें भेजेंगे, और वो बारिशें ऐसी होंगी कि हर जगह बारिश हो रही होंगी, ठीक है। जब भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने फरमाया कि जो विलेजेस होंगे वहां पर भी बारिशें हो रही होंगी, जो डेजर्ट्स होंगे वहां पर भी बारिशें हो रही होंगी, ठीक है, और हर किस्म की जो गंदगी होगी उस बारिश से जो है ना वो वॉश हो जाएगी, ठीक है, और जो बारिश का पानी है वो भी गारंटी ऐसे होगा कि वो भी जिस तरह आजकल कराची में पानी खड़ा हुआ है उस तरह पानी खड़ा नहीं होगा, बल्कि वो पानी भी जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्म से ड्रेन होकर के वो शायद रिवर्स और ओशंस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। रिवर्स और ओशंस जो अल्लाह ताला ने बनाए ना, स्पेशली ओशंस, ओशंस ऐसे बनाए हैं कि उनके अंदर जितनी भी गंदगी चली जाए, उन ओशंस में अल्लाह ताला ने ऐसे बैक्टीरियाज रखे हैं कि वो बैक्टीरियाज उस सारी की सारी गंदगी को ईट अवे कर लेते हैं, खा जाते हैं, और खाने से क्या होता है कि वो ओशन जो है ना उसका पानी रिलेटिवली यानी क्लीन हो जाता है, ठीक है, ऐसा क्लीन हो जाता है कि उसके अंदर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर इतने सारे जो है वो क्या कहते हैं यानी फिश रहती हैं और सब सर्वाइव करते हैं ना, तो वो गंदगी अल्लाह ताला ने खत्म करने के लिए बैक्टीरियाज बनाए, तो ये गंदगी भी जब ओशन में जाएगी तो ओशन भी जो है ना वो गंदा नहीं होगा, बल्कि वो वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा जी? देन अल्लाह ताला विल टेल द अर्थ ग्रो योर फ्रूट्स एंड अनरेवल द अबंडेंस ऑफ योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, यानी अल्लाह ताला फिर जमीन को हुक्म देंगे, जैसे कि अल्लाह ताला जमीन को आज हुक्म देते हैं उसी तरह उसको भी हुक्म देंगे, अल्लाह ताला से सारी चीजें होती है, ठीक है। जमीन के पास तो ये ऑप्शन नहीं है ना कि अल्लाह ताला हुक्म दें और जमीन कहे कि नहीं मैं नहीं मान रही आपकी, ठीक है, जमीन तो ये नहीं करती, आसमान भी ये नहीं करता, आसमान को जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं जी बारिश बरसाओ, बारिश करो, आसमान बारिश बरसाना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो अल्लाह ताला का हुक्म मुस्तकिल चल रहा होता है अपनी सारी क्रिएशन को, उसी तरह उस दिन अल्लाह ताला जब उनको हुक्म देंगे कि तुम खूब अपने फ्रूट्स उगाओ, जमीन को हुक्म देंगे खूब फ्रूट्स उगाओ, और खूब जो है ना अपने अंदर जो तुमने ट्रेजर्स रखे हुए हैं, जो जमीन के मिनरल्स हैं, जमीन के अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, जितने मिनरल्स हैं और उसके अलावा जितनी जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ रखी है, उस स्ट्रेंथ से ही ये सारे दरख्त उगते हैं, ठीक है ना। दरख्त कैसे उगते हैं? दरख्त को आप पानी देते हैं बस, ठीक है ना, पानी के अंदर से उनको थोड़ी सी न्यूट्रिशन मिलती है और जो सनलाइट मिलती है ऊपर से, ठीक है, तो सनलाइट से उनको कुछ विटामिन वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो असल स्ट्रेंथ मिलती है ना, ताकत जो पौधों को मिलती है वो सोयल में से मिल रही होती है, ठीक है, सोयल से वो अपना खाना हासिल करते हैं और उस खाने की वजह से उनमें इतनी ताकत आती है कि दरख्त बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, ताकि इतने बड़े बड़े दरख्त होते हैं कि जैसे कि कोई स्काई स्क्रैपर जैसी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़े दरख्त बन जाते हैं, कुछ ऐसे दरख्त आज भी मौजूद हैं दुनिया के अंदर। तो जमीन के अंदर ही अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकत रखी है, तो उस दिन ना अल्लाह ताला कहेंगे तुम अपनी ताकत को बिल्कुल अनलीश कर दो, ठीक है, खूब जो है वो अपने यानी अपने ऊपर उगने वाले पौधों को मजबूत करो अपनी ताकत से, ताकि बहुत बड़े बड़े पौधे बन जाए। एंड सो इट शैल बी एंड सच शैल बी द ब्लिस ऑफ इंक्रीज, सच शैल बी द ब्लिस ऑफ इंक्रीज दैट वन पोमेग्रेनेट अनार pomegranate को कहते हैं, अनार को कहते हैं, will suffice as food for a group of people. एक अनार इतना बड़ा होगा और उसके दाने इतने जूसी और इतने थिक होंगे एक अनार के अंदर कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो उस एक अनार को खाकर उनका पेट भर जाएगा, एक अनार के अंदर इतना होगा, ठीक है. तो यानी जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि जी फ्रूट जो है वो पहले छोटे एप्पल्स होते थे, अब इतने बड़े बड़े एप्पल्स होते हैं, ठीक है. लेकिन ये जो एप्पल्स आज के दौर में हम खाते हैं ना, ये जो बड़े हुए हैं ना, ये एक्चुअली कुछ ऐसे केमिकल्स इनके इनके ग्रोथ के अंदर डाले जाते हैं जिनकी वजह से ये इनका साइज ग्रो है. लेकिन इनकी न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशन पावर एक्चुअली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. एप्पल्स बड़े बड़े हैं, ऑरेंजेस बड़े बड़े हैं, गोभी गोभी होता है, कैबेज, इतनी बड़ी बड़ी गोभी होती है, इतनी बड़ी, ठीक है. और ये जो वाटरमेलन होता है, अब इतने बड़े वाटरमेलन, तो ये इतने बड़े कैसे हो गए भाई, ठीक है. ये इनको केमिकल्स फीड करते हैं, तो आपको सेहत वाली वो इनके अंदर से खत्म हो जाती है, ठीक है. क्योंकि ये ह्यूमंस ने अपने हरकतों के बारे काम किए हैं, ठीक है. केमिकल्स वगैरह जो इनको डाले, इनको इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक फ्रूट, इनऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह. लेकिन उस दिन जो अल्लाह ताला के हुक्म से होगा ना, ये ऐसा नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं होंगे इतने बड़े बड़े, बल्कि ये नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होंगे वो इतने बड़े बड़े होंगे कि जिनसे कि इंसानों की तबीयत भी खराब नहीं होगी और उनको बहुत अच्छा यानी रिफ्रेशिंग पावर यानी जो जो स्ट्रेंथ वगैरह वो भी मिल रही होगी, न्यूट्रिशन भी मिल रही होगी, ठीक है. फिर क्या होगा, हाँ, और ये के एंड इट शैल बी यूज्ड टू मेक कैनोपीज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन. अच्छा, जो जो इट्स शेल यानी जो अनार का शेल होगा, अनार का छिलका, जब हम अनार को तोड़ते हैं तो उसका छिलका अलग अलग हो जाता है. सही तरह अगर आपको अनार को काटना हो, काटना आता हो, तो आप ऐसे काटते हैं कि उसके बड़े बड़े छिलके के पीसेस अलग हो जाते हैं. तो वो अनार इतना बड़ा होगा कि उसका जो शेल होगा ना, उसको लोग छतरियों के तौर पर यूज कर सकेंगे, इतनी बड़ी बड़ी छतरियां बन जाएंगी उन अनार के शेल से, ठीक है. यानी उनका साइज बहुत बड़ा होगा. अच्छा, एंड मिल्क विल बी सो ब्लेस्ड as to suffice for a large number of people. ठीक है, यानी उस वक्त जो milk होगा, अच्छा, milk from one cow will be enough for everyone in a tribe. एक गाय का जो milk होगा उससे पूरा tribe अपना पेट भर सकेगा, ठीक है. पूरा कबीला, यानी कबीले में कम से कम जो है वो 20, 25, 30 या उससे भी ज्यादा लोग होते हैं, तो एक गाय जो है ना उसका इतना दूध होगा. And milk from one goat will be adequate for a whole clan. खानदान जो होता है, जो कि ट्राइब से छोटा होता है, ठीक है, जैसे 20 लोगों का एक खानदान, तो एक गोट का जो मिल्क है वो उस पूरे खानदान के लिए पूरा होगा. After 40 years of this period of extraordinary abundance, peace and protection, when the time due for qiyama will draw near, ठीक है, तो ये जो अच्छा दौर गुजरेगा ना, जिसके अंदर देयर विल बी कंप्लीट पीस, लोग लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई किसी को मारने वाला नहीं होगा, ठीक है, और खाना पीना जो है वो सफिशिएंट होगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, कि कोई भूखा नहीं मरेगा, बहुत ही अच्छा दिन होगा, बहुत ही अच्छे दिन होंगे ये, ठीक है. ये कितना लंबा चलेगा, 40 years तक, ठीक है. ईसा अलैहिस्सलाम की जो लाइफ होगी दुनिया में वो 40 years होगी, तो उस वक्त ये हालात होंगे. उसके बाद क्या होगा, अल्लाह ताला विल सेंड ए प्लेजेंट विंड which will cause their armpits to be benumbed and the soul of every believer and every Muslim will be taken away. ठीक है, फिर ये जो 40 साल रहेंगे ना, तो ईसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो जाएगा. ईसा अलैहि सलाम के इंतकाल के बाद फिर एक और होंगे लीडर मुस्लिम्स के, ठीक है ना. वो उनका भी नाम आया है, नाम एक्चुअली नहीं है, लेकिन वो कहफान कबीले के एक आदमी होंगे, जैसे यहाँ पे एक कबीला है ना कहफानी, आपने नाम सुना होगा सऊदी अरब.
तो वो उस कबीले के होंगे, वो फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमानों के लीडर बनेंगे, वो भी बहुत नेक होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से वो भी रूल करेंगे, फिर उनका भी इंतकाल हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ये हालात फिर से थोड़ा खराब होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन लोग मुसलमान रहेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि उसके बाद उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी विंड चलेगी अल्लाह ताला के हुक्म से कि जिसकी वजह से हर मुसलमान जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, सारे के सारे उस विंड को स्मेल करने की वजह से मर जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा। ठीक है, हर बिलीवर का इंतकाल हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जैसा भी हो। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या होगा, दुनिया के अंदर सिर्फ डिसबिलीवर्स रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त डिसबिलीवर्स भी दुनिया के अंदर पैदा हो चुके होंगे, यानी ऐसे लोग भी पैदा हो चुके होंगे जो कि अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते, सिर्फ वो लोग रह जाएंगे दुनिया के अंदर। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि लेफ्ट देयर विल बी द वर्स्ट अमंग ह्यूमन बीइंग्स द विकेड एंड द डिसबिलीविंग वंस हु विल इंडल्ज इन शेम एंड outrage on the earth like donkeys. ठीक है, जैसे कि animals होते हैं ना, जिस तरह वो जिंदगी गुजारते हैं, तो उसी तरीके से ना ये जो disbelievers बच जाएंगे दुनिया के अंदर, सारे believers तो मर गए, अब ये disbelievers वैसे जिंदगी गुजारेंगे, बहुत ही गंदी जिंदगी गुजारेंगे. And it is against them that the hour will stand activated. यानी इन disbelievers के ऊपर फिर अल्लाह ताला कयामत कायम करेंगे, यानी फिर उसके बाद इसराइल अलैहि सलाम को हुक्म देंगे कि अब आप सूर भूख किए. ठीक है, फिर उनके सूर भूख कैसे कायम होगी. जी, किसी को सवाल है यहाँ पर कहीं भी? जी नहीं, इमाम मेहदी जो है ना वो तो उस वक्त होंगे जब दज्जाल के साथ फाइटिंग चल रही थी, ये बहुत पहले की बात है इमाम मेहदी. अब जो हम पढ़ रहे थे ना ये तो बिल्कुल एंड की बात है, इमाम मेहदी को गुजरे हुए काफी लंबा समय हो चुका होगा. इसकी स्मेल कैसी होगी, कभी सुनी नहीं है. जैसी भी होगी बस ऐसी होगी कि उसको सुन करके आप मर जाएंगे. जी याजूज माजूज कहाँ से आएंगे, ये बड़ा खतरनाक सवाल है, तो उसके बारे में बात करनी तो है वैसे, करते हैं अभी उसके ऊपर बात. अच्छा चले, अगर कोई यहाँ क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में सवाल हो तो आप लोग लिखिएगा, जब तक मैं आगे पढ़ रहा हूँ. ये जो आगे हदीस है पेज 661 के ऊपर, ये वाली याजूज माजूज के बारे में है, सिर्फ उसके बारे में. बाकी जो अभी जो हमने हदीस खत्म करी है ना, उसमें तो फिर सब कुछ था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी स्टोरी जो है वो बहुत ही समराइज करके उस हदीस में बता दी. ठीक है, एंड ऑफ टाइम की पूरी स्टोरी. अब हम छोटी छोटी हदीसें पढ़ रहे हैं जिनके अंदर एक एक बात को थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया. तो उसमें बताते हैं कि एज फॉर द स्टोरी ऑफ याजूज एंड माजूज, द नरेशन ऑफ सैयदना अब्दुल रहमान इब्न यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन डील्स विद इट इन ग्रेटर डिटेल. ठीक है, याजूज माजूज के बारे में ये वाली हदीस है. इट सेज दैट वंस दे पास बाय बुहैरा तबरिया, याजूज एंड माजूज विल क्लाइंब जबल अल खमर, ए माउंटेन फ्रॉम अमंग द माउंटेन्स ऑफ बैतुल मक़दिस एंड से. तो पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो याजूज माजूज जो निकलेंगे तो ये एक छोटा सा सी है, सी ऑफ गैलरी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और अरबी में उनको उसको बुहैरा तबरिया कहते हैं, तबरिया तौस है. ठीक है, तो ये इसराइल में है. अब ये कहाँ पर है, ये इसराइल में है. ठीक है, तो ये वहाँ पे जब पहुँचेंगे ना तो इनमें जो सबसे पहले वाले लोग होंगे ये उस बुहैरा तबरिया में से पानी पीना शुरू कर देंगे और पीते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, पीते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, हत्ता कि जब इनका जो आखिरी बंदा आएगा ना तो वो आके देखेगा तो उसको कोई पानी नहीं मिलेगा, तो वो कहेगा कि अच्छा ये जो पानी है लगता है यहाँ पे पानी पहले था जो कि अब खत्म हो गया. ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई कि बुहैरा तबरिया जो है वो ड्राई हो जाएगा याजूज और माजूज के बाद. फिर उसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे तो एक वहाँ पर अलखमर माउंटेन है, वो भी आज भी वो यानी अलखमर के नाम से ही मशहूर है वो माउंटेन, वो भी इसराइल के अंदर ही है. तो उसके ऊपर फिर वो खड़े होंगे और वो ये कहेंगे. जी जब तक आप पूछो. अच्छा याजूज माजूज नॉन मुस्लिम है. तो
उसके बाद अलखमर माउंटेन के ऊपर जो खड़े हो जाएंगे ना, तो वहां पे जाकर के वो ये कहेंगे, अच्छा फिर वो कहेंगे कि वी हैव किल्ड हूएवर देयर वाज ऑन द अर्थ, कम लेट अस नाउ किल हूएवर देयर इज आउट इन द स्काइज। ठीक है, तो ये जो जादू पाजू होंगे ये डिसबिलीवर्स होंगे, नॉन मुस्लिम होंगे। ठीक है, ऐसे नॉन मुस्लिम होंगे कि ये अल्लाह ताला पर ईमान ही नहीं रखते होंगे, ये इस बात को मानते ही नहीं होंगे कि अल्लाह ताला भी है और आसमानों में है। ठीक है, अल्लाह कहाँ है जी, अल्लाह कहाँ है, इसके ऊपर हमने पूरी एक क्लास करी है अल्लाह कहाँ है के ऊपर, अर्श पर है, ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर है, तो अल्लाह ताला ऊपर है। ठीक है, जहां भी हम हो ना अल्लाह ताला ऊपर है। ठीक है, तो इसके ऊपर तो हम तो चीज से बात कर चुके हैं कि क्यों ऊपर है। बहरहाल, तो इस वजह से ना याजूज और माजूज को इतना पता होगा कि ये जो मुस्लिम्स है ना, ये मुस्लिम्स जिसको अपना खुदा कहते हैं ना, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, तो ये ऊपर है, कहीं ना कहीं ऊपर है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, इतने बेवकूफ़ होंगे, हाँ ये एथियस्ट होंगे, ये जो याजूज माजूज है ना ये एथियस्ट होंगे, दे विल डिनाई गॉड, ये गॉड है ही नहीं, क्रिएटर है ही नहीं कोई। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये करेंगे कि जब सारे लोगों को ये मार चुके होंगे, मोमिनीन को तो मार नहीं सकेंगे लेकिन बाकी लोगों को मार देंगे, अब ये कहेंगे कि अब हम किसको मारें, तो अब ये कहेंगे तो अब हम ना ये जो बिलीवर्स जिसको गॉड कहते हैं ना, लेट अस ट्राई टू किल हिम, अब हम गॉड को मारते हैं। ठीक है ना, हेवेंस में जो है ऊपर जो है, तो वो नौजबिल्ला कहेंगे हम गॉड को और जो एंजल्स हैं वो एंजल्स भी ऊपर रहते हैं तो हम एंजल्स को मारते हैं। तो इसके लिए ये लोग जो है वो उस माउंटेन में खड़े होकर के फिर अपने जो एरोज या इनके पास जो भी चीज़ होगी, बुलेट्स गन्स होंगी, एरोज होंगी, मिसाइल्स जो भी होंगे, वो ऊपर की तरफ फायर करेंगे। ठीक है ना, यूं करके ऊपर फायर करेंगे, हम गॉड को मार रहे हैं। ठीक है, मजाक, ये मजाक वाली बात होती है ना, जब बहुत ज़्यादा कोई बहुत बुरे मजाक के मूड में आ जाए ना, तो फिर इसी किस्म की हरकतें करता है। तो वो फिर क्या करेंगे कि हम ऊपर जो है ना अपने एरोज शूट करेंगे, सो दे विल शूट देयर एरोज टुवर्ड्स द स्काई एंड अल्लाह विल मेक देयर एरोज रिटर्न बैक टू देम स्मीयर्ड विद ब्लड। उनके एरोज वापस ऊपर से नीचे गुजरेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, नीचे गिरेंगे। ठीक है, लेकिन उनके अंदर खून लगा हुआ होगा, ब्लड लगा हुआ होगा उनके अंदर। ठीक है, सो दैट दोज डिम विटेड पीपल, यानी जिनकी अकल जो है ना बिल्कुल ही डिम हो चुकी है, अगर आपका बल्ब जो है वो डिम हो जाए ना, कहते हैं ये बल्ब जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है, मरने वाला है, तो उनकी अकलें भी जो है ना वो बिल्कुल डिम हो चुकी होंगी, डिम हुई भी होंगी। तो डिम विटेड का ये मतलब होता है, तो डिम विटेड पीपल आर प्लीज्ड विद द प्रॉस्पेक्ट दैट दे हैव डन अवे विद हूएवर देयर वाज इन द स्काई। अब इन्होंने मार दिया क्योंकि खून लग करके इनके एरोज वापस आ गए, इसका मतलब है एंजल्स और नाउज बिल्ला खुदा जो है ना वो मर चुका है हमारे एरोज की वजह से। अच्छा, ये तो एक हदीस ही हो गई याजूज माजूज के बारे में। फिर फरमाया कि अबाउट द स्टोरी ऑफ दज्जाल, द नरेशन ऑफ सैयदना अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला एड्स दैट दज्जाल विल स्टे अवे फ्रॉम अल मदीना अल मुनव्वरा। ठीक है, वो मदीना मुनव्वरा के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। व्हेन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम टू रीच इवन द लिंक रोड्स लीडिंग टू इट, he will come to a saline tract of land close to Medina Munawwara. ठीक है, Medina Munawwara के entrance के 6 रास्ते हैं, आज भी वो 6 रास्ते हैं। ठीक है, if I remember correctly 6 ही रास्ते हैं। ठीक है, तो वो 6 रास्तों पर वो आ ही नहीं सकेगा दज्जाल, so that he can enter properly in Medina Munawwara, हाईवे के ऊपर बैठ करके Medina Munawwara आ सके, ऐसा कर ही नहीं सकेगा। तो अब ना वो किसी और तरीके से आने की कोशिश करेगा, तो वो प्रॉपर हाईवे नहीं होगी, तो फिर वो किसी यानी ऐसे रास्ते से आएगा जहाँ पर कि बहुत सॉल्ट होती है और बहुत वहाँ पे मड वगैरह इस तरह की, यानी इट्स नॉट अ प्रॉपर रोड लीडिंग टू मदीना मुनव्वरा। ठीक है, तो वो उसके रास्ते से ना उस सेलाइन ट्रैक ऑफ लैंड से ना मदीना मुनव्वरा में एंटर होने की कोशिश करेगा, तो एंटर हो नहीं सकेगा वो, बिकॉज अल्लाह ताला ने एंजल्स इस तरह से बिठाए हुए होंगे कि एंजल्स उस को एंटर होने से रोक देंगे। तो फिर ना वो मदीना मुनव्वरा के बाउंड्री के बाहर ही फिर रुक जाएगा। ठीक है, अब अपने गाड़ी में रुकेगा, अपने प्लेन में रुकेगा, या कोई सुना है कि एक पैलेस बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, वो उस पैलेस के अंदर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, बनाया तो बहुत पहले किसी ने था, अपने लिए बनाया था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसके मरने के बाद उसकी पैलेस जहाँ दज्जाल ने इस्तेमाल करना है, तो ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होना। खैर, वो कहीं ना रुक जाएगा। फिर क्या होगा, At that time, a man will come out to confront him. And this man will be the best of men at that time, or among the best of men. यानी उस जमाने में जो सबसे ज्यादा नेक लोग दुनिया में रहते होंगे तो उनमें से एक आदमी जो है ना दज्जाल के पास जाएगा. Addressing him, he will say, I am certain that you are the Dajjal, about whom the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had told us. ठीक है, वो दज्जाल कहेगा कि मुझे यकीन है कि तुम वही दज्जाल हो कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था. ठीक है, अब क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि वो जो बोलेंगे ना, मुझे यकीन है कि तुम ही वो दज्जाल हो, इसका मतलब क्या कि लोगों को इस बात का यकीन नहीं होगा. ठीक है ना, कि ये दज्जाल है. वो समझेंगे कि बस कोई बंदा है जो कि अभी आ गया है बस. ठीक है, जैसे पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि दज्जाल को ना बहुत ही अच्छा इंसान बना करके प्रेजेंट किया जाएगा, बहुत अच्छा. तो लोग उसको बुरा समझेंगे नहीं, वो उसको अच्छा समझेंगे. तो इसके लिए फिर बहुत सारे और भी ड्रामे किए जा सकते हैं. ठीक है, जैसे कि पहले एक बुरा काम करवाया जाएगा. ठीक है, किसी से कहा जाएगा कि तुम एक बहुत बुरा काम करो, लोगों के ऊपर जो है ना वो जुल्म करो, और उसके बाद फिर उस जुल्म को रिमूव करने के लिए दज्जाल को सामने लाया जाएगा, और दज्जाल आकर के ना उस जालिम आदमी को फिर हटा देगा. तो लोग उसको बहुत अच्छा समझेंगे. ठीक है ना, और लोग उसकी बड़ी वाह वाह करेंगे. ठीक है, दिल बड़ा जा रहा है बोलने का लेकिन बोलता नहीं हूँ कि ये क्या हो रहा है. सो यही हो रहा है. सो बहरहाल, तो एनीवे, तो लोगों को पता नहीं होगा कि ये दज्जाल है, लेकिन इनको इनको यानी यकीन होगा. से मतलब कि ही विल नॉट बी, इनको भी पता नहीं होगा, लेकिन ये जब कंपेयर करेंगे ना कुरान के अंदर जो उन्होंने चीजें पढ़ी होंगी, हदीस में जो चीजें पढ़ी होंगी, उनको जब कंपेयर करेंगे दज्जाल के हालात से, तब उनको ना ही विल बी एबल टू ज्वाइन द डॉट्स, ही विल बी एबल टू कंक्लूड कि हाँ ये दज्जाल है. लेकिन अपेरेंटली नहीं पता लगेगा कि ये दज्जाल है. बहुत कुछ सोच समझ करके और इल्म को इस्तेमाल करके और हदीसों को पढ़ करके समझ करके फिर समझ में आएगा कि ये दज्जाल है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई ये जो आकर के कहेंगे ना कि मुझे तो यकीन है कि तुम ही वो दज्जाल हो, तो दज्जाल जब ये सुनेगा तो कहेगा कि टेल मी ओ पीपल, इफ आई किल दिस मैन देन मेक हिम अलाइव, विल यू स्टिल डाउट द थिंग अबाउट माई बीइंग गॉड. ठीक है, तो दज्जाल के साथ ना उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी होंगे, उसके जैसे लोग. ठीक है, तो वो दज्जाल जब इनसे ये बात सुनेगा ना, तो दज्जाल अपने लोगों की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैं खुदा हूं. वो ये नहीं कहेगा मैं दज्जाल हूं, वो कहेगा कि मैं गॉड हूं. ठीक है, मैं गॉड हूं. वो उन लोगों से कहेगा कि देखो गॉड जो है ना वो तो इंसानों को मारता है और इंसानों को जिंदा करता है, तो लेट मी डेमोंस्ट्रेट टू यू दैट आई डू द सेम थिंग, दैट आई कैन ऑल्सो डू दैट, कि मैं इस बंदे को मार देता हूँ और फिर मैं इसको तुम्हारे सामने जिंदा करके दिखाऊंगा. तो अगर मैं ये कर लूंगा तो क्या तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं खुदा हूं? ठीक है, तो लोग कहेंगे हाँ. तो फिर वो क्या करेगा, वो इस बंदे को मारेगा, काटेगा उसको, एंड देन ही विल bring him back to life. Okay, so he will kill him and then bring him back to life, whereupon he will tell Dajjal. Acha, jab wo zinda ho jayega to fir wo aadmi yani wo nek aadmi Dajjal se kahega, by Allah, now I have become more certain that you are the Dajjal. Theek hai, yani ab uski yaqeen mein aur izafa ho jayega ki yahi Dajjal hai. इसने ईमान किया, ईमान. ठीक है, फिर जब इसने ये ऑब्जर्व भी कर लिया ना, मुशाहिदा भी कर लिया कि हाँ इसने मार करके मुझे दोबारा जिंदा कर दिया. ठीक है ना, तो अब उसको उसका जो ईमान था वो यकीन में तब्दील हो जाएगा और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, देखिए सारी बातें बार बार हमें याद दिला रही हैं कि दज्जाल की शक्ल पे कोई दज्जाल लिखा हुआ नहीं होगा. पीपल विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम एज दज्जाल. ठीक है ना, ईमान की बुनियाद पर उनको अंदाजा होगा कि यह दज्जाल है. ठीक है, कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी में उनको अंदाजा होगा कि यह दज्जाल है. ठीक है ना, कोई उनको बोलेगा नहीं कि यह दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया. नो वन विल बी टेलिंग दैट, नो वन विल बी सेइंग दैट. ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी उम्र के भी बच्चे मौजूद हैं इन क्लासेस के अंदर. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी. नहीं, दज्जाल की एक आंख से पता नहीं लग जाएगा, वो अपनी आंख को या तो किसी तरीके से छुपा के रखेगा, हो भी उसकी आंख वैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, लेकिन वो आंख लोगों को नजर नहीं आ रही होगी इस तरीके से, या कोई और चीज होगी, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता ना, अभी तो आपको मैं समझा ही रहे बात। Isn't there काफिर written on him? हाँ, काफिर उसके ऊपर written भी होगा, लेकिन उसको भी जो है किसी तरीके से वो लोगों से छुपा के रखेगा। जी तो आप अपने डॉक्टर को पता होगा, आपके अम्मा पापा दोनों डॉक्टर हैं, उनको ज्यादा पता होगा कि किस तरह किसी को मार करके उसको जिंदगी जा सकता है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये उलमा कहते हैं कि दज्जाल को ना अल्लाह ताला कुछ एबिलिटीज देंगे, ठीक है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिजिकली जो पॉसिबल नहीं है, मटेरियली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसको ना कुछ ऐसी एडिशनल कैपेबिलिटी ऐसी दे देंगे टेम्परेरली, ठीक है ना, कि वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकेगा, ठीक है। लेकिन ये एक एक एक्सप्लेनेशन है खाली। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये भी है कि ये इतनी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा कि जिसकी बुनियाद पर ना ही विल बी एबल टू कनेक्ट, जिस तरह आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, आप ये कैपिलरी लेवल, कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स से भी पतली पतली जो इन दोनों के दरमियान से कनेक्शन कर सकेगा, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है ना, तो वो बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको दोबारा इम्प्लांट करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपकी बॉडी से कट ऑफ हो जाता है ना, कट ऑफ होने के बाद दोबारा से वो जाकर के उस बॉडी का हिस्सा बन जाता है, वो फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हार्ट के लेवल पर तो ये काम ऑलरेडी हो चुका है ना, तो इसी तरीके से लिम्ब के लेवल के ऊपर भी ये काम हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा ऑलरेडी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हाथ कट गया तो उसको जोड़ सकते हैं ना, तो बिजली तरीके से पेट कट गया तो पेट को भी जोड़ सके, ठीक है। ये दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि किसी तरीके से कनेक्शन, अब ये डॉक्टर्स को, जब भी मैंने आपसे कहा था डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर्स को ये बात ज्यादा पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। तीसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आजकल आपने क्लोनिंग के बारे में सुना है, क्लोनिंग, ठीक है, कि एक जैसे शीप है, ठीक है, अब शीप के, अब मुझे एक्चुअली क्लोनिंग की ज्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन आप बिल्कुल उसी प्रॉपर्टीज का एक और शीप बना सकते हैं, ठीक है, ये तो बहुत सालों पहले हो चुके हैं, आज से 10 साल पहले ही क्लोनिंग हो चुकी है शीप, ठीक है, लेकिन अब जो है ना दे आर वर्किंग ऑन डूइंग ह्यूमन क्लोनिंग, ठीक है ना, ह्यूमन क्लोनिंग भी करना, ये करना चाहते हैं, इनको सपोजली गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही ह्यूमन क्लोनिंग की, ठीक है, लेकिन वेरी श्योर कि लेबोरेटरीज के अंदर ऑलरेडी डन दैट, ठीक है, ह्यूमन क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग के अंदर क्या है, क्या डिटेल्स है, उसका तो अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, लेकिन मे बी जो ये इस आदमी को मारेगा ना, ये एक्चुअली उस आदमी को नहीं मार रहा होगा, ठीक है, बल्कि उसका कोई क्लोन होगा। क्लोन का मतलब होता है कि बिल्कुल उसी जैसी कोई और चीज होगी, ठीक है ना, तो वो उस आदमी को नहीं मारेगा, उस आदमी को किसी तरीके से वो हाइड कर देगा, जैसे जो मैजिशियंस होते हैं, सो कॉल्ड मैजिशियंस जिनको हम कहते हैं, वो एक रैबिट को डालते हैं ना अपनी टोपी के अंदर, अपनी टोपी को दिखाते हैं, वो रैबिट नजर नहीं आता, भी कहाँ चला गया रैबिट, रैबिट तो उधर ही था, लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा होता ना, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। एक क्या नाम है उसका, डेविड कॉपरफील्ड, राइट, डेविड कॉपरफील्ड जो है ना, एक आदमी मर गया, वो जिंदा है, यूके के अंदर होता था, तो उसने इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स करके लोगों को दिखाई, ठीक है, कि सामने से, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा ना कि एक आदमी खड़ा है सबके सामने और एकदम से स्टार्ट्स फ्लाइंग, डेविड कॉपरफील्ड used to fly, ठीक है, लेकिन actually he was not flying, ठीक है, लेकिन वो ऐसे असर डालता था अपनी brain के की concentration करके ना, इस तरह focus करता था सामने बैठे हुए लोगों को, कि लोगों को ऐसा नजर आना शुरू हो जाता था कि वो fly कर रहा है, हालांकि वो fly नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, तो this is all mental ability, जिससे कि इंसान इस तरह की हरकतें कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है, तो हो सकता है कि दज्जाल भी इसी तरह की कोई हरकत कर रहा हो, कि एक्चुअली वो जो कट कर रहा है ना, वो कट नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे वो कट कर रहा है, ठीक है, या ये कि वो क्लोन को कट कर रहा है, असल आदमी को उसने वहां से छुपा दिया और किसी को पता ही नहीं लगा कि उसने छुपा दिया, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, वी डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है, तो फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर तो वो जो ईमान वाला होगा वो कहेगा कि अब तो मुझे यकीन हो गया है, और भी ज्यादा यकीन हो गया है कि तुम ही दज्जाल हो, इसलिए कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें पहले से बताई हुई थी. अकॉर्डिंग टू ए नरेशन ऑफ सैयदना अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपीयरिंग इन द सही ऑफ बुखारी एंड मुस्लिम, यानी जो हदीस की सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब है मुस्लिम, तो उसके अंदर ये हदीस है कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ऑन द डे ऑफ कयामा Allah Ta'ala will ask Sayyidina Adam alayhi salam, raise the hell bound from your progeny. Yani tumhari jo ye tumhara jo puri ki puri family hai, yani all human beings, to Adam alayhi salam se ye kahenge ke apni family mein se tum jo jahannam wale log hai na unko tum alag karo. Theek hai, yani Adam alayhi salam se kahenge ke jitne jahannam mein log hain unse kaho ke tum alag ho jao. ठीक है, यानी इस तरह की कोई अल्लाह ताला उनसे बात करेंगे. अब आदम अलैहि सलाम ये काम कैसे करेंगे और यानी हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर हिम हर ह्यूमन बीइंग से जहन्नम वाले लोगों को अलग करें, वी रियली डोंट नो. देन द डिवाइन कमांड, अच्छा जब आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला कहेंगे ना तो आदम अलैहि सलाम आगे से अल्लाह ताला से पूछेंगे कि ओ माई लॉर्ड हु आर दे, कि कौन जहन्नमी लोग हैं इनमें से. ठीक है, मुझे तो नहीं पता, ये तो आपको पता है. तो फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि देन द डिवाइन कमांड विल गो फोर्थ दैट 999 ऑफ एवरी 1000 आर हेल बाउंड विद ओनली वन बाउंड टू गो टू पैराडाइज. ठीक है, अल्लाह ताला आदम अलैहि सलाम को जवाब देंगे कि आपके जो जो बच्चे हैं यानी इंसान, उनमें से हर 1000 इंसानों में 999 जहन्नुमी है और सिर्फ एक जन्नत में जाने वाला. ठीक है ना, ये अल्लाह ताला आदम अलैहि सलाम को बतला देंगे. ठीक है, अच्छा जब सहाबा ने ये बात सुनी तो स्केयर्ड द नोबल सहाबा आस्क्ड या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु फ्रॉम अमंग अस शैल बी द वन बाउंड टू गो टू पैराडाइज. यानी उनको खौफ लग गया कि अगर 1000 में से 999 जहन्नुम में जाने वाले हैं और सिर्फ एक जन्नत में जाने वाला है तो फिर तो लगता है कि हम सारी जहन्नुम में जाने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि हम में से तो 1000 में से, यानी वो समझे कि जैसे कि सहाबा जो है ना उनकी बात हो रही है कि वो 1000 सहाबा अगर हैं तो 1000 में से 999 सहाबा जहन्नुम में चले जाएंगे और सिर्फ एक सहाबी जन्नत में जाएगा. वो इस तरह से बात ठीक है, तो उनको बहुत डर लगा कि भाई इसका मतलब है एक ही हम में से जन्नत में जाएगा तो हम सारी. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डू नॉट वरी बिकॉज आउट ऑफ दिस 999 हेल बाउंड पीपल देयर विल बी ओनली वन फ्रॉम अमंग यू व्हाइल रेशियो वाइज देयर विल बी 1000 फ्रॉम अमंग द याजूज एंड माजूज. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बात समझाई कि नहीं, ये जो 1000 की बात हो रही है ना कि 1000 में 999 जहन्नुम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा, ये तुम्हारी बात नहीं हो रही है. ठीक है ना, ये ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, ओवरऑल ह्यूमन बीइंग्स जो दुनिया के अंदर रहे हैं ना. ठीक है, उनमें से 999 जहन्नुम में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा. ठीक है ना, ओवरऑल ह्यूमन बीइंग में से. तो अब ये 999 जहन्नुम में जाने वाले कौन लोग होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये याजूज माजूज होंगे. ठीक है ना, और एक जो जन्नत में जाएगा वो बिलीवर होगा, ईमान वाला होगा, यानी याजूज माजूज सारे काफिर होंगे और बाकी जो एक होगा ना वो ईमान वाला होगा, तो वो जन्नत में जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए नरेशन ऑफ सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर अदरान इन द मुस्तदरक ऑफ अल हाकिम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट अल्लाह ताला डिवाइडेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स इनटू 10 पार्ट्स. 9 of these belong to Ya'juj Ma'juj, while the remaining one part covers the human beings of the whole world. खैर ये जरा मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो खैर आप लोग जरा उम्र आप लोगों की छोटी है, लेकिन जो बाकी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा उनकी वजह से मैं बात समझा रहा हूँ कि ये जो आप सुन फरमाया ना तो इसका मतलब फिर एक और हदीस से हमें और समझ में आता है कि ओवरऑल ह्यूमन बींग, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वक्त तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहते हैं ना 6 बिलियन है, 6 बिलियन. ठीक है, लेकिन अगर आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक के सारे इंसानों को आप काउंट करें तो वो 6 बिलियन तो नहीं होंगे ना, वो कितने होंगे, वो तो ट्रिलियंस में होंगे, बिलियन से भी ज्यादा ट्रिलियंस होंगे. ठीक है, तो लेट्स से 100 ट्रिलियन ह्यूमन बीइंग्स दुनिया के अंदर रहे हैं,
इस हदीस का मतलब यह है कि 100 ट्रिलियन ह्यूमन बीइंग्स को अल्लाह ताला ने 10 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया ना, तो 10 पार्ट्स में से 9 पार्ट्स जो है वो जहन्नुम में जाएंगे और 1 पार्ट जो है वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, यानी मेजोरिटी जाने वाले जो है जहन्नुम में होंगे और बहुत कम जो है वो जन्नत में जाने वाले होंगे। लेकिन ये जो 9 पार्ट जहन्नुम में जाने वाले होंगे ये याजूज माजूज वाले लोग होंगे। After having quoted these narrations in Al-Bidayah wa Nihayah, Ibn Kathir has written that it tells us that the number of Yajuj Majuj is significantly higher than the entire human population. Iska matlab ye nahi hai ki Yajuj Majuj human nahi hai, Yajuj Majuj bhi human hai, lekin ye ek zara different type of humans hain, kyunki ye jo hai bahut hi bure qisam ke log hain, to ye jahannam mein jayenge aur baaki jannat mein. Acha theek hai, mere sath mein kafi ho gaya hai, agar mujhe bhi khub lagi hogi logon ko aur मुश्किल भी थोड़ा होता चलेगा, तो बाकी डिस्कशन हम अगली क्लास में रखते हैं। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं याजूज माजूज के बारे में जो कि हमारे स्कॉलर्स ने लिखी हैं। ठीक है, जिनसे याजूज एंड माजूज के जो मसले हैं ना कि वो कौन हैं, कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा समझ में आ सकती हैं, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। किसी को यहाँ पर सवाल है कोई? जी पूछे। दज्जाल फरिश्तों को देख सकेगा? नहीं, ये हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है कि दज्जाल फरिश्तों को देख सकता है कि नहीं देख सकता, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि फरिश्तों ही ने उसको अभी भी बांध के रखा हुआ है, फरिश्तों ही ने उसको उसकी जंजीरों को तोड़ना भी है ताकि वो वहां से निकल आए, और फरिश्तों ने उसको फिर फरिश्तों और दज्जाल की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हमें हदीस में मिलती है कि फरिश्ते ये कहेंगे, दज्जाल ये कहेगा, राइट, दज्जाल कोई बात कहेगा और फरिश्ता आगे से कोई और बात कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या वो फरिश्तों को देख सकता है कि नहीं। ठीक है, बज़ाहिर तो जो समझ में आती है बात हदीसों से वो ये कि वो नहीं देख सकता क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग जो है वो फरिश्तों को देख नहीं सकते। ठीक है, तो रूल के मुताबिक वो नहीं देख सकते। बेबीज देख सकते हैं, बेबीज देख सकते हैं, लेकिन मतलब ये हमें नहीं पता देख सकते हैं, देख सकते हैं इसलिए हमें पता ही नहीं है, जब हम बेबी थे तो हमने देखा कि नहीं देखा, तो भूल जाता है। ठीक है, चलिए क्लास में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।